तो वेदों में लिखा है कि यस्तन्न वेदा किम ऋचा करिष्यति, कि जो वेदों को नहीं जानता, जो वेदों के मतलब को नहीं जानता, उसका वेद भी कुछ नहीं कर सकते। केवल शास्त्रों को पढ़ने से शास्त्र नहीं समझ पाओगे आप लोग, शास्त्रों का निर्णय समझना पड़ेगा, शास्त्रों का सार समझना पड़ेगा, उसको विवेक कहते हैं, तभी हम शास्त्रों को समझ सकते हैं। कोई किताब पढ़ेंगे, किताब रट के अगर हम बैठ जाएं, और अगर किताब का हम निर्णय नहीं समझेंगे तो उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए गीता हमें वेदों का निर्णय दे रही है, गीता हमें चक्षु दे रही है, जिससे हम वेदों को और शास्त्रों को ठीक ठीक तरीके से समझ पाए। तो वेदों में क्या है, जो लोग गीता नहीं पढ़ते, जो केवल वेदों का अध्ययन करते हैं, वो लोग इस निष्कर्ष पे आते हैं कि वेदों में दिया है कि शक्ति की उपासना करो। कुछ लोग इस निष्कर्ष पे आते हैं कि वेदों में दिया है कि निराकार की उपासना करो। कुछ लोग वेद पढ़ के इस निष्कर्ष पे आते हैं कि शिव जी की उपासना करो। मगर अगर हम वेदों में है सब कुछ, कुछ लोग वेद पढ़ के इस निष्कर्ष पे आते हैं कि ध्यान योग करो, केश्चित ज्ञान अवलंबका केश्चित कर्म अवलंबका, रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं। कुछ लोग ज्ञान का रास्ता अपनाते हैं वेद पढ़ के, चक्र कुंडलिनी नहीं, योग ध्यान समाधि इनकी चर्चा करते हैं, मुक्ति आत्मा अनात्म विवेक। कुछ लोग कर्म अवलंबका, कुछ लोग कर्म के रास्ते पे चलते हैं, पुण्य कर्म करना है, पाप नहीं करना है, धर्म का रास्ता अपनाना है, ये कर्म का रास्ता है। मगर रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, वयम तो हरिदासा नाम, मगर हम लोग ना ज्ञान का रास्ता अपनाएंगे ना कर्म का रास्ता अपनाएंगे, हम लोग हरि के दास हैं। हम लोग पात्रान अवलंबकम, हम न ज्ञान को अवलंब करेंगे न कर्म को अवलंब करेंगे, हम लोग हरि के दासों के चरणों की जो पादुकाएं हैं उनका अवलंब करेंगे, उनकी शरण लेके हम हरि को प्राप्त कर लेंगे। इसको कहते हैं भक्ति। भक्ति केश्चित ज्ञान अवलंबका पदाम भुजम ते, नरसिंह स्तोत्र में आता है कि कुछ लोग ज्ञान का रास्ता अपना के भगवान कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ लोग सुकर्मा, कुछ लोग सुकर्म करके कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। मगर जो व्यक्ति भगवान की कृपा पर निर्भर होके भगवान को प्राप्त करना चाहता है वही भगवान को प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण ही उपाय है और वो ही लक्ष्य है। भगवान को प्राप्त करने का तरीका भगवान खुद है। और ये हमें कैसे पता लगा, ये हमें वेदों को पढ़ के नहीं पता लगेगा, क्योंकि वेदों में बहुत सारी चीजें हैं, ये हमें गीता पढ़ के पता लगेगा। तो वेद तो ठीक करो यार, तो वेद तो वेद दूध की तरह है। दूध होता है हमारे पास, मगर उसमें हमें मक्खन नहीं दिखाई देता, ना ही हमें उसमें घी दिखाई देता है। मगर दूध को मथेंगे तब उसमें से मक्खन और घी निकलेगा, नहीं कोई बेवकूफ है वो नहीं समझ पाएगा कि उसमें घी और मक्खन है। उसी प्रकार जो वेद पढ़ते हैं और वेदों को गीता की मथनी से नहीं मथते, उनको कभी समझ नहीं आएगा कि उसमें घी भी है और उसमें मक्खन भी है। और वो घी और मक्खन क्या है, वो है भगवान की शरणागति, भगवान की भक्ति, जो रहस्य है। सरहस्य तद अंगम च, मनु संहिता में लिखा है कि वेदों में जो रहस्य है, जब उस रहस्य के साथ हम वेद की चर्चा करते हैं तब शास्त्र समझ आते हैं। वो रहस्य भक्ति है, शरणागति है, प्रपत्ति, कैंकर्य, बहुत सारे नाम है भक्ति के। तो ये गीता में दिया, ये भगवान गीता में समझा रहे हैं। इसीलिए गीता सदैव विशेष थी, आज भी विशेष है, आगे भी विशेष है। गीता बिना पढ़े हम भ्रमित हो जाएंगे। सो मैं कल प्रोग्राम करने गया था तो वहां पे भी मैंने क्या हो गया रहा है ठीक नहीं हो सकता है इसको ट्रेवल कम करो। सो या थोड़ी दूर होके बैठ जाता हूँ। तो मैं कल प्रोग्राम करने गया था तो मैंने वहां पे लेक्चर दिया और मैं उनको बता रहा था देखो शिवजी महान भक्त है, खुद वैष्णव है, शिवजी बहुत बड़े विष्णु की उपासना करते हैं शिवजी, और हमें कैसे पता, हरे कृष्ण, हमें कैसे पता, ये शास्त्रों में दिया है। कौन से शास्त्र में, ये वेदों में दिया है कि शिव विष्णु की उपासना करते हैं, कृष्ण की उपासना करते हैं शिव। हरे कृष्णा। वेल, तो शिव विष्णु की उपासना करते हैं। तो क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथकस्ति हेतो यम शंभूताम अपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि स्वयं शिव जी जिनकी उत्पत्ति विष्णु से हुई है, इसलिए शिव जी का नाम है रुद्र। तो ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी के बीच में से शिव जी की उत्पत्ति हुई रुद्र की, ऐसा पुराणों में लिखा है, पद्म पुराण में। और वो रो रहे थे इसलिए उनका नाम ब्रह्मा जी ने लिखा रुद्र, रोमत। सो यम शंभूताम अपि तथा समुपैति कार्यात्, ये जो शिव है ये विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं। और ये हमें क्या सिखा रहे हैं कि विष्णु कृष्ण या राम एक ही हैं, इनकी भक्ति करनी चाहिए, नहीं वैष्णव नाम यथा शंभु, ये शास्त्रों में लिखा है। सबसे बड़े वैष्णव है शिव जी। तो वेल, मैं कल बता रहा था देखो शिव जी भी वैष्णव हैं, शिव जी पार्वती दुर्गा देवी वो वैष्णवी शक्ति हैं, नारायणी शक्ति हैं, ये मार्कंडेय पुराण में लिखा है। वो स्वयं विष्णु की पूजा करती हैं। गणेश जी, उनमें जो विघ्न विनाश की जो शक्ति है वो भी गोविंद से आ रही है। अथर्ववेद में लिखा है यत्पाद पल्लव विनिधाय कुंभे द्वंदे प्रणाम समये सगनाधिराज विघ्नन विहंत मलमस्य जगत त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कि गणेश जी अपने क्या कहते हैं इसको, पाद पल्लव विनिधाय कुंभे, अपने कुंभ सूंड से भगवान विष्णु के चरणों को पकड़े रहते हैं, इसलिए उनमें जो विघ्न हटाने की शक्ति है वो स्वयं विष्णु से आ रहे। विष्णु जी का एक रूप है नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान से शक्ति लेते हैं वो इस संसार में विघ्न हटाने की, वो गणेश जी हैं। सो मैं उनको बता रहा था देखो इस तरह से सारे देवी देवता भी हमें विष्णु या कृष्ण की भक्ति सिखाते हैं। तो वो फिर एंड में आकर वो प्रवचन खत्म होने गया था कि बोला उन्होंने कि देखो पता नहीं सुना मेरा प्रवचन नहीं सुना, फिर उन्होंने बोला देखो जो भावे कैसे कहते हैं है, हाँ जो भावे वही स्वामे और वो पूजा करो। मैंने कहा, मैं सोच रहा था कि मैंने एक घंटा इसी पे लेक्चर कर दिया कि जो भावे सो सुहावे, गलत है आपकी, हमारी भावना से कुछ नहीं होता। भावना करना ठीक है मगर यह भी पता होना चाहिए किसके लिए भावना रखनी है। नहीं, अंधी भावना का कोई फल नहीं होता। तो कहते देखो सभी परमात्मा है, किसी जो भी भाव है बस उसमें मन लगा लो, भक्ति करो, ये नहीं है, गलत है। पूजा और प्रेम केवल एक ही के लिए है और वो कौन है, वो कृष्ण है। कृष्णा निर्णय गीता में दे रहे हैं, गीता में कह रहे हैं कृष्णा कि विदेश यज्ञेशु तपसु च एव ज्ञानेशु तत्फलम उपैति। 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान अपना निर्णय दे रहे हैं। आई थिंक 54th वर्स है, या कृष्णा बता रहे हैं यहाँ पर, भक्त्या तु अनन्या शक्या अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। केवल भक्ति के द्वारा। भक्ति किसके लिए? मेरे लिए। और किसी के लिए भक्ति नहीं होती। भोक्ता राम यज्ञ तप साम, पांचवें अध्याय के अंतिम श्लोक में कृष्णा कह रहे हैं कि मैं ही सारे यज्ञों का भोक्ता हूं, सारे यज्ञ मेरे लिए ही होने चाहिए। यज्ञ मतलब होता है कि त्याग। जो भी त्याग करो, जो भी खाओ, जो भी तपस्या करो, जो भी वेद पढ़ो, उसका अंतिम लक्ष्य मैं हूं। दुर्गा देवी नहीं है, ब्रह्मा जी नहीं है, गणेश जी नहीं है, अश्विन कुमार नहीं है, इंद्र नहीं है, वायु नहीं है, इन सब की स्तुति वेदों में दी है देवी देवताओं की स्तुति। मगर देवी देवताओं की स्तुति वेदों में इसलिए है हमें ये बताने के लिए कि अगर देवी देवता इतने महान है जो देवों के देव और उनके भी देव श्री कृष्णा, वो कितने महान होंगे। नहीं, हम महादेव बोलते हैं, नहीं महादेव शिव जी, जब वो इतने महान है तो जो शिव के आराध्य हैं श्री कृष्णा या राम या विष्णु, वो कितने महान होंगे। नहीं, तब हमें पता लगता है। इसलिए वेदों में देवी देवताओं की स्तुति है। देवी देवताओं की स्तुति वेदों में इसलिए नहीं कि हम भी देवी देवताओं की स्तुति करें। वो तो कृष्णा कह रहे हैं अल्प बुद्धिमान लोग करते हैं, अल्प मेदसाम यान्ति देवव्रत देवान। सॉरी, तो कौन सा श्लोक है? नौवे अध्याय का ना, या नौवे अध्याय में कृष्णा कह रहे हैं, आई जस्ट टेल यू, या नौवे अध्याय में कृष्णा कह रहे हैं कि ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ति श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। जो लोग भगवान कह रहे हैं कि जो लोग देवताओं के भक्त हैं वो त्रुटिपूर्ण ढंग से पूजा करते हैं, क्योंकि पूजा किसकी होनी चाहिए? केवल कृष्ण की होनी चाहिए। प्रेम किससे होना चाहिए? केवल कृष्ण से होना चाहिए। आदर सबको देना चाहिए, मगर प्रेम और पूजा केवल कृष्ण की होती है, क्योंकि हमारा संबंध भगवान से है। इस संसार में पांच चीजें हैं, ईश्वर, गीता में जो विषय बताए हैं, ईश्वर, जीव मतलब हम लोग, प्रकृति ये संसार जो हमें दिखाई दे रहा है, और काल समय जिसके प्रभाव में हम चलते जा रहे हैं, और हमारे कर्म। अपने स्वभाव से, काल के प्रेरणा से हम जो काम करते हैं उसको कर्म कहते हैं। हम करते रहते हैं। पांच चीजें बस, और इन पांचों में संबंध क्या है वो ही समझना गीता का ज्ञान है। तो कृष्णा बता रहे हैं संबंध क्या है, ईश्वर का हमसे कुछ संबंध है। कृष्णा गीता में कह रहे हैं ममैव अंश जीव लोके जीव भूत सनातना। अर्जुन, सब सारे जीव मेरे अंश हैं, मैं उनका पिता हूं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, मैं उनकी गति हूं, मैं उनका प्रभु हूं। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। जैसे मैं सुबह भी बता रहा था, मान लीजिए पीछे कोई बाइक खड़ी है, जैसे ये स्पीकर ही है, तो ये स्पीकर किसका है हमें कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगा सकते हो? ध्यान लगा के पता लगा सकते हो? नहीं। हमें जब स्पीकर का मालिक बताएगा मेरा है, तभी पता लगेगा, नहीं वरना नहीं, कभी नहीं पता लग सकता। उसी प्रकार ये संसार किसका है? किसी का तो होगा संसार, कुछ खाली से थोड़ा ना सब कुछ आ जाता है। किसी का संसार है, हमें क्या, तो किसका है? हर चीज किसी ना किसी की होती है इस संसार में, किसी ना किसी की प्रॉपर्टी है। कोई लवारिस वस्तु नहीं होती, कुछ ना कुछ होती है किसी ना किसी की। तो संसार किसका है? ये संसार कृष्णा कह रहे हैं गीता में अहम सर्वस्य प्रभवो, दसवें अध्याय के आठवें श्लोक में, ये संसार मेरा है, मुझसे प्रकट हुआ है। अर्जुन, ब्रह्मा जी से प्रकट नहीं हुआ है, भगवान से संसार प्रकट हुआ है, कृष्ण से। ब्रह्मा जी ने तो केवल इसकी डिजाइनिंग की है, कृष्ण से प्रकट हुआ है। भूमिर, भूमि, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये कृष्ण से प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी ने तो केवल इंजीनियरिंग किया, नहीं ईंट पत्थर नहीं बनाया, ईंट पत्थर तो कॉन्ट्रैक्टर कहीं और से आ रहे हैं, तो इंजीनियर केवल ईंट पत्थरों से घर बनाता है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अग्नि वायु जल ये सब नहीं बनाया है, वो कृष्ण ने बनाया है। एको बहुश्याम, और ब्रह्मा जी को कहते हैं ठीक है तुम अब इंजीनियर बनाओ। ब्रह्मा जी केवल सृष्टि करते हैं, मगर कृष्ण सबको सब चीजों का उद्गम है, सब चीजों को प्रकट करते हैं। भगवान और ब्रह्मा जी में फर्क है, ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, मेगा कृष्णा, कृष्णा कौन है, कृष्णा आदि करता है, सबसे आदि वही है। सो ईश्वर और ब्रह्मा जी में फर्क है, ब्रह्मा जी का कोई संबंध नहीं है संसार से, जिस प्रकार एक इंजीनियर का घर से कोई संबंध नहीं होता, उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने का कोई संबंध नहीं है, भगवान का संबंध है, क्योंकि भगवान की प्रॉपर्टी है। ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचित जगतयाम जगत, इस संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है और नहीं दिखाई दे रहा, इस उपनिषद में लिखा है, वो सब ईशावास्यम, वो सब कृष्ण का है। तो तेना त्यक्ते न भुंजंता, हमें उतना ही लेना चाहिए संसार से जितना जीने के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर हम जरूरत से ज्यादा लेंगे अपने भोग करने के लिए तो हम चोर कहलाएंगे। मां गृदा कस्य धनम, ये किसी और का धन है, तो भगवान गीता में निर्णय दे रहे हैं, तो फिर क्या भ्रम है, कोई भ्रम नहीं है। नहीं तो ब्रह्मा जी भगवान नहीं है, जब उनकी कोई सब सारी चीजें उनकी नहीं है तो वो भगवान कैसे हो गए। भगवान तो वो है ना जिसका सब कुछ है, भगवान वो है जन्माद्यस्यता, जिससे सबको जन्म हुआ है, ब्रह्मा जी सबको जन्म नहीं हुआ। ऐसे ही दुर्गा देवी है, दुर्गा देवी से सबको जन्म नहीं हुआ, दुर्गा देवी वैष्णवी देवी है, दुर्गा देवी इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी है, वो इस ब्रह्मांड की रक्षा करती हैं दुर्गा देवी, इसलिए उनका नाम दुर्गा है। दुर्ग, दुर्ग मतलब होता है किला। तो कौन है वो देवी, हे शगुनमयी मम माया दुरतया, कृष्णा कह रहे हैं दुर्गा देवी मेरी शक्ति है, गीता में चौथे अध्याय में, देवी हे ऐशा गुणमयी, ये जो गुणमयी शक्ति है दुर्गा, जो देवी है वो मेरी शक्ति है, उसको माया के नाम से भी जाना जाता है, और बहुत मुश्किल है उनको पार करना। दुर्गा देवी हमें संसार में बंद करके रखती है, कई नाम है दुर्गा देवी के, अंबा, अंबालिका, अंबा चंडी काली, नहीं बहुत सारे नामों से जानी थे, कात्यानी, बहुत सारे नामों से जाना जाती है। और उनका उनका काम है कि जो लोग उनसे इच्छा मांगने आएंगे उनकी इच्छा पूरी कर देगी, और इस तरह से वो हमेशा हमेशा के लिए जन्म मृत्यु में फंसे रहेंगे। मगर जो लोग कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं उनको आशीर्वाद भी देंगी, क्योंकि वो वैष्णवी शक्ति हैं, कि वो भगवान की भक्ति में संलग्न होकर इस दुर्ग से, इस ब्रह्मांड से मुक्ति प्राप्त कर ले। वो दुर्गा देवी है। तो दुर्गा देवी अधिष्ठात्री देवी है, मगर उनकी प्रॉपर्टी नहीं है जगत, उनकी भी जिस प्रकार ब्रह्मा की प्रॉपर्टी नहीं है, दुर्गा की प्रॉपर्टी नहीं है, समझे। दुर्गा देवी से कोई संबंध नहीं है जगत का, केवल अधिष्ठात्री देवी है। ऐसे शिव जी हैं, शिव जी प्रलय करते हैं, नहीं रुद्र, 8 रुद्रों के रूप में, कृष्णा खुद गीता में कह रहे हैं कि न कि अहम रुद्र जायते, कि मुझसे रुद्र उत्पन्न होते हैं। शिव जी प्रलय करते हैं, बस भगवान ने उनको कहा इतना करो, मगर शिव जी से सब कुछ प्रकट नहीं हुआ। मगर कृष्ण भगवान, अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से, परम ब्रह्म परम धामा पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। कृष्णा आप अजन्मा है, आपका जन्म नहीं होता, लोग सोचते हैं कि देवकी से जन्म हुआ है मगर वह मूर्ख है, आपका जन्म दिव्य है, आप प्रकट होते हैं, लोग सोचते हैं कृष्ण मर गए मगर कृष्ण की कभी मृत्यु नहीं होती, आप अप्रकट हो जाते हैं, वो तो लीला है जन्म और मृत्यु की, असुरों को मोहित करने के लिए, भ्रमित करने के लिए। अजन्मा पुरुषम, आप आदि पुरुष हैं, क्योंकि सब कुछ आपका है, इसलिए आपकी सेवा में नियुक्त करने के लिए ही है। नहीं, अगर हमें ये नहीं पता होगा किसका है तो हम उसकी सेवा में क्यों लगाएंगे। तो इसीलिए पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप शाश्वत हैं, आपका कभी नाश नहीं होता, और दिव्य, दिव्य मतलब आपके 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 कार्य आपका जन्म, आपका कर्म सब कुछ रहस्यमय है। केवल साधुओं की शरण में समझ आता है, साधु के संग नहीं होगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो साधु इसलिए गीता का ज्ञान देते हैं, जब तक गीता का ज्ञान नहीं पता होगा तब तक हम हमारे मन में ये स्पष्ट नहीं होगा कि संसार कौन है, ईश्वर कौन है, इन दोनों का संबंध क्या है, हम लोग कौन है, हमारा संबंध क्या है, हमारा हम भी कृष्ण से प्रकट हुए हैं। कृष्णा गीता में कह रहे हैं ममैव अंश, ये सारे जीव मेरे अंश हैं, मगर ये भूल गए, न तो अवे हम जातु नाशम न ने मैं जनाते पर। दूसरे अध्याय में कृष्णा गीता में कह रहे हैं अर्जुन, ये सारे राजा जो युद्ध में खड़े हैं और जो तुम हो, तुम नहीं जानते अतीत वर्तमान और भविष्य के बारे में, मैं जानता हूं क्योंकि मैं भगवान हूं, क्योंकि मैंने ही सब कुछ सृष्टि की है। दसवें अध्याय के दूसरे श्लोक में कृष्णा कह रहे हैं न मैं विदु सुरगण प्रभवंति न महर्षया, कोई भी देवी देवता मुझे नहीं जानता क्योंकि सबसे पहले मैं ही था। पुत्र पिता को पूरी तरह कभी नहीं जान सकता, नहीं, क्योंकि पुत्र तो बाद में पैदा हुआ है, उसके पैदा होने से पहले जो पिता ने किया उसको थोड़ा ना पता। उसी प्रकार कृष्णा कह रहे हैं न मैं विदु सुरगणा, कोई भी देवी देवता मुझे नहीं जानता, महान ऋषि भी नहीं जानते, क्यों, क्योंकि प्रभवंती न महर्षय, क्योंकि मैं ही सबका उद्गम हूं। इसको कहते हैं संबंध ज्ञान, और ये गीता से मिलता है। सो अगर गीता नहीं पता होगा तो इस गीता के ज्ञान का अभाव से ही लोग शाक्त होते हैं, शिवाइट हैं, गान पाते हैं, अलग अलग मत पालन करते हैं, मगर वैष्णव ही सबसे श्रेष्ठ और परम मत हो सकते हैं। ये वैष्णविज्म है जो कि भगवद गीता की टीचिंग है, नहीं तो कृष्णा 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 झूठ तो नहीं बोल रहे, नहीं सबको सच ही बोल रहे हैं ऑफ कोर्स। तो इसलिए जब हम वेद पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वेदों की शिक्षा गीता से मैच हो रही है या नहीं। अगर वेदों की शिक्षा, शास्त्रों की शिक्षा गीता के अनुसार नहीं है तो वो शिक्षा हम छोड़ देते हैं, यही सारे आचार्यों का मत है। जो गीता से शिक्षा मैच हो रही है वो हम लेते हैं वेदों में, शास्त्रों में, क्यों, क्योंकि वेदों में बहुत सारी शिक्षाएं हैं, हम अपनी छोटी बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप देखते हैं पेपर में कभी आता है, कभी सूर्य की पूजा करो, कभी इसकी पूजा करो, कभी ये व्रत कर लो, इस मंत्र को जप करने से ये फायदा हो जाएगा, उस मंत्र को जप करने से वो फायदा हो जाएगा, मगर कुछ होता तो है नहीं। करते रहते हैं सब लोग अंधविश्वास से, कुछ भी नहीं होता। ये सारी चीजें वेदों में, बहुत सारी चीजें हैं, मगर अलग अलग काल के लिए, अलग अलग परिस्थितियों के लिए हर मंत्र, हर उपाय, हर चीज हर समय के लिए नहीं होता, समझे। जैसे उदाहरण के लिए यज्ञ, यज्ञ करना कलयुग के लिए नहीं है, शास्त्रों में दिया है, पद्म पुराण के उत्तरखंड में दिया है कि कृतय अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरो परिचर्यायाम कलौतद हरि कीर्तनम। तो या तो यज्ञ की विधि, तो यज्ञ की विधि त्रेता युग के लिए थी, द्वापर और कलयुग के लिए यज्ञ की विधि नहीं है। अब कई लोग यज्ञ करा रहे हैं कलयुग में भी, यज्ञ करो, अब यज्ञ कैसे करोगे, शुद्ध घी नहीं है क्या, क्या 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 आप यज्ञ में क्या डालडा घी डालोगे क्या, कहाँ से लाओगे, यज्ञ की सामग्री शुद्ध होनी चाहिए, कहाँ से लाओगे आप, गाय का घी होना चाहिए, भैंस का घी नहीं हो सकता, अशुद्ध है। और जो मंत्र बोलने वाले उनको भी शुद्ध होना चाहिए, बिल्कुल उनका चरित्र पूरा शुद्ध होना चाहिए। किसका चरित्र शुद्ध है, किसका उच्चारण शुद्ध है संस्कृत का, बहुत मुश्किल है। इसलिए यज्ञ की विधि त्रेता युग के लिए थी, ये पद्म पुराण में लिखा है। शास्त्रों में है यज्ञों की विधि, मगर किसी और काल के लिए, समझे, क्योंकि वैसे भी यज्ञ करना बड़ा मुश्किल है, रोज कैसे करोगे आप कलयुग में, संभव नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा गीता में कहा है यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि, सारे यज्ञों में से सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है, जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। जप यज्ञ मतलब भगवान का नाम जप करना, कृष्णा गीता में अपना निर्णय दे रहे हैं, सिंपल। तो कलौ तद हरि कीर्तनम, कलयुग में हरि कीर्तन है। तो आप किसी के पास जाओगे तो वो कहेगा कि भाई कलयुग में यज्ञ करना चाहिए, ठीक है शास्त्रों में दिया है, वो हजार आपको कोट शास्त्र प्रमाण दे देगा, देखो शास्त्रों में लिखा यज्ञ करने से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मगर एक कहावत है, आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। तो जो लोग वेद पढ़ रहे हैं वो पूरे वेद नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए कुछ लोग कहते हैं कि देखो हम सिर्फ वेद मानते पुराण नहीं मानते, कुछ लोग हैं ऐसे। तो मगर उन्होंने आधा वेद पढ़ लिया, पूरा वेद पढ़ के पता लगेगा कि पुराण पंचम वेद है, छांडोग्य उपनिषद में लिखा है पंचमम वेदम इति उच्यते। सो मैं समझा रहा हूं कि अगर वेद आप वेद पढ़ के भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, मगर फिर सारे वेद पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आधा अधूरा वेद पढ़ोगे तो फिर बस गड़बड़ होगी, फिर समन्वय नहीं होगा। या तो सारे वेद पढ़ो या मत पढ़ो। अब जितने भी गुरु हैं जो कि वेदों के अनुसार प्रचार कर रहे हैं, वो भी सारे वेद नहीं पढ़ सकते। वो इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि वेद है ही नहीं हमारे पास सारे। ऋग्वेद की 1100 शाखाएं थी, ऋग्वेद की 1100 शाखाएं थी, आज केवल 11 शाखाएं बची हैं हमारे पास, खो गई सारी। मुगल आए नहीं, और उसके बाद सुल्तान ये लोग आए और सारे का सारे हमारे वेद जला दिए नहीं। तो तक्षशिला और नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी उसमें सब थे, पढ़ाते थे लोग, जला दिए। कुछ जर्मन्स को अंग्रेज लोग उठा के ले गए, सब नष्ट हो गए। आधे पौने तो वेद बचे हमारे पास, तो कैसे पढ़ोगे सब कुछ? सो अगर पूरे वेद की हमारी शिक्षा नहीं होगी तो आधा अधूरा ज्ञान बहुत डेंजरस है। एक आदमी ने शास्त्र पढ़े और मंदिर आना छोड़ दिया, क्योंकि उसमें लिखा था मंदिर नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा शास्त्रों में लिखा है, मगर उसने बाद में नहीं पढ़ा कि आगे भी लिखा है कि जूते पहनकर। बस यही बात है, शास्त्रों में लिखा यज्ञ करना चाहिए, मगर उसने आगे नहीं पढ़ा कि ये यज्ञ त्रेता युग में करना चाहिए, सत्युग कलयुग के लिए ये विधि नहीं है। तो आधा पढ़ के बस प्रचार करना शुरू कर दे, गलत हो गया। इसीलिए भगवान ने ये सब देखकर, क्योंकि दुर्भाग्य है हमारा, अगर हम बुद्धिमान भी हैं वेदों को समझने के लिए अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार, मगर दुर्भाग्य है कि वेद है ही नहीं सारे, क्या कर लो अब। इसीलिए भगवान ने गीता बोली है, सारे शास्त्रों का निचोड़ इसमें दे दिया। एक किताब पढ़ लो सब कुछ समझ आ जाएगा, एक साधे सब सदे, सब साधे कोई ना सदे, कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए मैं नहीं कह रहा, ये शंकराचार्य लिख रहे हैं, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एक किताब वो क्या, देव की पुत्र की गीता। देव की पुत्र इसलिए बोला है क्योंकि कृष्ण नाम के कई लोग हैं शास्त्रों में, तो मगर देव की पुत्र से क्लियर हो गया कि कौन है वो यशोदा नंदन वासुदेव के पुत्र कृष्णा है, जो स्वयं भगवान है, ईश्वर परमा कृष्णा। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एक शास्त्र गीता, एक मंत्र तस्य नामानि, यानी एक मंत्र हो उनका नाम। इसलिए हम क्या जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा खुद गीता में कह रहे हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम, सदैव मेरा कीर्तन करो। भगवान ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे ध्यान लगाओ, यहाँ पे ध्यान लगाओ, यहाँ पे ध्यान लगाओ, पता नहीं कहाँ का ध्यान लगाना है, भगवान जाने। है शास्त्रों में है ये सब, ध्यान बिंदु उपनिषद में दिया है सब, इसको अष्टांग योग कहते हैं, राजयोग, हठ योग, जड़ योग, अलग अलग नामों से जाना जाता है। गैरांड संहिता, शिव संहिता, ध्यान बिंदु उपनिषद, पतंजलि, इनमें योगों की चर्चा है सब कुछ है। मगर भगवान ने निर्णय दिया, क्लेशो अधिक तरस देशम, 12वें अध्याय में, कि अर्जुन बहुत क्लेश है, ये कोई नहीं कर पाएगा कलयुग में ध्यान योग, क्योंकि सबसे पहले ध्यान योग करने के लिए अखंड ब्रह्मचर्य चाहिए, वो किसी के पास नहीं है कलयुग में, कैसे करोगे? आसन प्राणायाम बहुत मुश्किल है चीज है करना। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि सततम कीर्तन, तो मां मेरा कीर्तन करो। ध्यान योग था मगर वो पहले के योगों के लिए था, जब शरीर अच्छे थे और सोसाइटी इतनी कलुषित नहीं थी, दूषित नहीं थी। अब इतनी दूषित हो गई है समाज कि मन को भी शुद्ध रखना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए भगवान का कीर्तन करो, ये विधि है कलयुग की। तो जिसने गीता नहीं पढ़ी फिर वो अपनी अपनी विधियां बनाते हैं और बोलते हैं देखो शास्त्रों में दिया है। हाँ दिया है शास्त्रों में, सब कुछ है, मगर भगवान का निर्णय भगवान का निर्णय, भगवान के निर्णय से कुछ ऊपर नहीं है। इसलिए एको मंत्र तस्य नामानी आनी, जो भी आप जितने भी मंत्र कर रहे हो वो आप कर लो, मगर उस वो निष्फल हो जाएंगे क्योंकि उसका कोई फायदा ज्यादा नहीं होगा। थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है मगर फायदा क्या है, ना उससे कोई मोक्ष मिलना है और ना ही उससे कोई मनुष्य जीवन की सिद्धि होगी, वो है भगवान से प्रेम करना। कृष्णा कह रहे हैं मुझसे प्रेम करना ही जीवन का लक्ष्य है। मनमना भव मत भक्तो। तो एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक अकर्म एक एक काम हो कृष्ण की सेवा और एक ईश्वर हो वो है कृष्ण, बस काम खत्म। कोई भ्रम नहीं है, कोई परमात्मा, परमात्मा है, चीजें हैं शास्त्रों में परमात्मा, मगर वो परमात्मा कौन है, वो श्री कृष्ण है। परमात्मा मतलब जो आत्मा के परम प्रिय है, परम आत्मा, और आत्मा के परम प्रिय केवल एक ही है, वो है श्री कृष्ण। मैं नहीं कह रहा, कृष्ण खुद कह रहे हैं कि किसमोम सर्वभूतेषु न मैं द्वेषो अस्ति न प्रिया। अर्जुन मैं सबके लिए समान हूं, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, कोई मुझे प्रिय नहीं है, मगर ये भजन्ति तु माम भक्तया मई तितेषु चापेहम, मगर जो मेरी भक्ति करता है, जो मुझसे प्रेम करता है, मैं उससे प्रेम करता हूं। तो प्रेम करना जीवन का लक्ष्य नहीं, पूजा करना केवल जीवन का लक्ष्य नहीं है, प्रेम करना जीवन का लक्ष्य है। शास्त्रों में पूजा की विधियां हैं मगर पूजा से ऊपर प्रेम है, और वो कृष्णा गीता में बता रहे हैं। वो आप सारे वेद पढ़ लोगे आपको नहीं समझ आएगा, गीता में स्पष्ट है प्रेम की चर्चा। इसलिए गीता सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है। अगर कोई पढ़ना है तो एक किताब पकड़ लो, वो गीता, गीता पढ़ो सुबह शाम। और शायद शुरू में आपको समझ नहीं आए, थोड़ी मुश्किल हो, मगर बार बार पढ़ते रहोगे तो धीरे धीरे समझ आने लगेगी। हजार किताबें पढ़ोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो हमारी प्रार्थना आपसे ये कि ये गीता ले लीजिए, मैं बार बार बोल चुका हूँ, ये गीता स्पेशल है क्योंकि जो मैंने आपको समझाया है वो सब इस गीता में है। बाकी गीताओं में, गीता प्रेस की इधर उधर की गीता पढ़ेंगे तो उसमें व्याख्या नहीं होती, इसलिए कुछ समझ नहीं आता। लोग गीता पढ़ते हैं वो कहते हैं समझ नहीं आया, क्लिष्ट है। वेल, अगर आप बिना साधु संघ के गीता पढ़ोगे तो कैसे समझ आएगा। तो साधु संघ मतलब कि इसमें हर श्लोक की व्याख्या है, ये पता नहीं बाहर से दिखाई नहीं दे रहा, मगर हर श्लोक की व्याख्या दी हुई है इसमें, हर संस्कृत शब्द का मतलब दिया हुआ है कि जिससे आप हर शब्द पे मनन कर पाओ कि भगवान क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए ये गीता जब इस्कॉन के लोग प्रचार कर रहे हैं देश विदेश में, और इस गीता को पढ़ के लोग कृष्ण के भक्त बन रहे हैं। कोई भी और गीता मार्केट मिल रही है उसको पढ़ के कोई कृष्ण का भक्त नहीं बनता, बल्कि गीता पढ़ के वो कहते हैं कि देखो गीता पढ़ने के बाद हमें पता लगा है कि कर्म करो, ये उनके माइंड में, उनको अपने आप से गीता पढ़ के समझ आता है। सो मेरी प्रार्थना आपसे, प्लीज ये गीता लीजिए, वहाँ स्टॉल पे मिल रही है, तो आप लेंगे तो मैं इस पर साइन भी कर सकता हूँ उसके बाद। और इस किताब के साथ दो किताबें फ्री भी हैं अभी इस महीने, मतलब पिछले महीने, मगर दो तीन दिन हो गए हैं, मगर इस किताब के साथ, गीता के साथ हम दो किताबें फ्री दे रहे हैं, आप लोग ले सकते हैं, उस पर भी मैं साइन कर सकता हूँ। और रोज एक श्लोक पढ़िए, सारी किताबें बंद कर दीजिए, सारी किताबें रख दीजिए अलमारी में, केवल गीता पढ़िए सुबह शाम, उसको अपने पर्स में, अपने पैंट की जेब में कहीं भी रखो, पढ़ो बस, क्योंकि गीता पढ़ने में कोई नियम नहीं है। जिस प्रकार भगवान का नाम लेने में कोई नियम नहीं है, गीता पढ़ने में कोई नियम नहीं है, क्योंकि गीता पुराणिक किताब है, ऐतिहासिक किताब है, महाभारत का अंश है, वेदों का अंश नहीं है, जबकि वेदों का सार है मगर फिर भी वेदों का अंश नहीं है। इसलिए सब लोगों का अधिकार है, स्त्री वैश्य शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय सबका अधिकार है गीता पे। और गीता पढ़ने से भगवान की बहुत सुलभम पार्था, कृष्णा कह रहे हैं मैं बहुत सुलभ तरीके से प्राप्त हो जाऊंगा अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आप लोग वहाँ से गीता ले सकते हैं, इसके बाद दो किताबें ले सकते हैं इस प्रोग्राम के बाद, और नित्य प्रति पढ़िए, चाहे नहाए चाहे ना नहाए, सुबह उठ के पढ़ लीजिए। कोई शुद्ध अशुद्ध का नियम है? शुद्ध अशुद्ध का नियम तो वेदों में है, मगर वो उनके लिए है जो 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 पूजा के विधि विधान को पालन करते हैं। मगर वैष्णव और भक्त पूजा नहीं करते कृष्ण की, प्रेम करते हैं, और प्रेम के पथ पर, भक्ति के पथ पर विधि विधान नहीं है। उसमें केवल एक ही विधि है, किताब को पढ़ना, बस पढ़ना होता है। इस किताब को पढ़ेंगे तो इसका फल मिलेगा। जैसे यज्ञ, अगर आप यज्ञ करेंगे, जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ है, पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ, अगर आप यज्ञ कर रहे हैं और आपकी इच्छा है पुत्र प्राप्त करने की, तो उस यज्ञ का फल पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। मगर अगर आप पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं और आपकी इच्छा नहीं है पुत्र प्राप्त करने की, तो पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। यजमान की इच्छा पर निर्भर करता है कि उस यज्ञ का फल आए या ना आए, समझे? उसी प्रकार गीता है, गीता को अगर आप पूजा की विधि से पढ़ना चाहोगे, कर्म कांड की दृष्टि से, तब इसके विधि विधान है, तब अंगन्यास है, करण न्यास है, बहुत कुछ करना पड़ेगा। मगर अगर आप भगवान से प्रेम करने के लिए गीता पढ़ना चाहोगे तो कोई विधि विधान नहीं है, इच्छा पर निर्भर है। नहीं, हमारी हमारा लक्ष्य अलग हो गया तो तरीका अलग हो गया पढ़ने का। तो इसलिए अपने पास रखिए, पढ़िए और भगवान का नाम लीजिए, श्रवणम, गीता का श्रवण कीजिए और कृष्ण की वाणी पढ़िए और कृष्ण का नाम लीजिए। इसी से जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के बाद हम कृष्ण के धाम चले जाएंगे। यत यत गतवान अनिवर्तन्ते, और भगवान के धाम जाने के बाद वापस हम डाल्टनगंज में कभी नहीं आएंगे, और हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास जाकर अमर, अजर, सुखी और हमेशा के लिए आनंदित, वैकुंठ, बिना कुंठा के यहाँ पे रहेंगे। भगवान की यही इच्छा है हमारे से कि हम ये संसार छोड़ के उनके पास वापस आ जाएं। क्यों? क्योंकि हम भगवान से प्रेम नहीं करते, मगर वो हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए उनकी इच्छा है हम वापस उनके पास आ जाएं। और वे संभव कैसे होगा? गीता पढ़ के। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? कोई कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन है? सो इफ देयर इज माइक है कोई हमारे पास? एक मिनट, ध्यान से ये रिकॉर्डर निकालो यहाँ से, ऊपर देखो, मुझे ऊपर देखो। हाँ बोलिए
महाराज जी, से प्रार्थना।
अच्छा, आप पूछ रहे हैं तिलक लगाने से क्या फायदा? वेल, डॉक्टर हॉस्पिटल में एप्रन क्यों पहनता है? एप्रन पता है, कोट, डॉक्टर का कोट क्यों पहनता है? बिना कोट के भी पेशेंट को ठीक कर सकता है। कोट से कोई मतलब नहीं है दवाई का, मगर फिर भी कोट पहनता है। क्यों? क्योंकि वो पहचान है कि वो डॉक्टर है, तो पेशेंट जब जाएंगे तो वो समझ जाएंगे डॉक्टर है, इसी के पास जाना है। उसी प्रकार है तिलक है, जो तिलक लगाता है लोगों को पता लगाता है कि भक्त है, ये हमें भगवान का ज्ञान दे सकता है। हमारी ड्रेस है, ड्रेस वैष्णवों की, पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि ये शरीर हम लोग अपना नहीं मानते, ये शरीर किसका है? भगवान का शरीर है। जो लोग इस शरीर को अपना मानते हैं, त्रिधातु कुनापे, जो इस शरीर को, जो तीन धातुओं से बना है, कफ पित वायु, जो लोग इसको अपना मानते हैं वो तो गधे के समान है, क्योंकि मिट्टी का शरीर अपना मान रहे हो। नहीं, ये किसका है? ये भगवान का है। जो भूमि को अपना मानते हैं कि मेरा देश है, जो घर को अपना समझते हैं मेरा घर है, और जो शरीर को अपना समझते हैं, सैव गोखरा, सास कह रहे हैं कि वो गधे और गाय के समान है, उसमें बुद्धि नहीं है। सो असली बुद्धि क्या है कि सब कुछ किसका है? कृष्ण का है, शरीर भी कृष्ण का है। तो जब ये शरीर भगवान का, शरीर मंदिर है भगवान का, भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में स्थित है, तो जिस प्रकार हम मंदिर को सजाते हैं उसी प्रकार हमें शरीर को भी सजाते हैं। तो कैसे सजाएं? तो बेस्ट है कि इस शरीर पे भगवान के चरण चिन्ह होने चाहिए, होने चाहिए नहीं होने चाहिए? तो तिलक भगवान का चरण चिन्ह है, ये भगवान का चरण है, दिखाई दे रहा है मेरा तिलक? हल्का पड़ गया होगा ऐसे करके, आपके भी लगा हुआ है। ये चरण चिन्ह है, और ये जो नीचे तुलसी है ऐसे करके, तुलसी होती है क्योंकि भगवान के चरणों में सदैव तुलसी विद्यमान है। शास्त्रों में लिखा है जिसके मस्तक पे भगवान, जिसके मस्तक पे भगवान के चरण चिन्ह नहीं है, जिसके शरीर पे भगवान के चरण चिन्ह, सिर्फ मस्तक पे नहीं, हम लोग 12 जगह द्वादश तिलक लगाते हैं, 12 जगह तिलक लगाते हैं, सर पे, पेट पे, हाथों पे, पीठ पे। तो जिसके शरीर पे, जिसका शरीर भगवान के तिलक से सजा नहीं है, उसका शरीर शमशान घाट है, शास्त्रों में लिखा है। सो वेल, क्यों शमशान घाट है? क्योंकि वो शरीर अपना समझ रहा है, और शरीर का अंत कहाँ होगा? अंत तो वहीं होगा शमशान घाट में, भस्मी तो हो जाएगा, भस्मी भूतस्य देहस्य। तो बेटर है कि हम इस शरीर को भगवान का समझें, और क्योंकि हम मंदिर समझते हैं इसलिए इसको हम सजाते हैं तिलक से, ये दूसरा कारण है। जो लोग अपना समझते हैं वो नहीं सजाते, वो लोग सोचते हैं मेरा शरीर है, मैं कैसे लगाऊंगा तिलक, लोग क्या सोचेंगे। वेल, जो सोच रहे सोचने दो, लोग अगर कुएं में जा रहे हैं, हम कुएं में नहीं जाएंगे, हम लोगों के सोचने से नहीं चलते, हम भगवान के विचार से चलते हैं। अगर पूरा संसार आपसे घृणा करे मगर भगवान आपसे खुश हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं? अगर भगवान ही आपसे खुश नहीं है, सारा संसार खुश है, तो फायदा ही क्या उसका, नहीं? उसका कोई फायदा ही नहीं है। वैसे भी तिलक लगाने से सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, सात्विक लगते हैं। यहाँ पे भी सबने तिलक लगाया, नहीं? दक्षिण भारत में तो सभी तिलक लगाते हैं, आप जाएंगे सभी तिलक लगाते हैं। सो वैसे तो आजकल लोग उस वैसे तिलक नहीं, तो लाल लाल रंगोली नहीं होती, उत्तर भारत में तो ऐसे बस टीका लगा देते हैं, वो विधान शास्त्रों में नहीं है, ऐसे तिलक नहीं लगाते, तिलक अलग अलग तरीके के होते हैं, ये तो मनोकल्पना है, बस एक रंगोली लगा ली, वो विधान नहीं है तिलक लगाने का, तिलक लगाने का विधान है शास्त्रों में। तो चरण चिन्ह ये, तो इसको इसको कहते हैं ऊर्ध पुंड तिलक, ये ऊर्ध पुंड होता है, ये ऊर्ध है, ये पुंड है, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। जो तिलक लगाता है अपने शरीर पे, भगवान को पता लगता है कि ओ, ये शरीर, इसने शरीर मुझे अर्पण कर दिया। वो एक तीसरा कारण है तिलक लगाने का, कि हमें शरीर कृष्णा आपकी सेवा में अर्पण कर रहे हैं, इसलिए हम लोग तिलक लगाते हैं। ओके, कुछ और पूछना है किसी को, कुछ कहना है, कोई प्रश्न है किसी का? बलराम, ठीक है, सो कुछ है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अभी कीर्तन करेंगे 5 मिनट, और फिर उसके बाद किसी को गीता चाहिए और उसके बाद 2 किताबें फ्री चाहिए तो वहाँ से ले सकते हैं, मुझे साइन करा सकते हैं, और फिर उसके बाद सबके लिए प्रसाद भी होगा। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।